ये SBS उर्दू है। ऑस्ट्रेलिया में माजूरीन और बुजुर्ग लोगों के लिए कैरियर फैसिलिटीज और डिसेबिलिटी एडवोकेसी एसोसिएशन मौजूद हैं जो मल्टी कल्चरल ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करते हैं, यानी माइग्रेंट ऐसे लोग जो दूसरे मुल्कों से आके यहाँ बसते हैं, अगर कोई उसमें माजूरीन है डिसेबिलिटीज़, तो उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट का और उनकी मदद के लिए एक निज़ाम मौजूद है। और इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहतरमा रूबीना यास्मीन साहिबा मौजूद हैं, जो ख़ुद भी मल्टी कल्चरल डिसेबिलिटी एडवोकेसी एसोसिएशन ऑफ न्यू साउथ वेल्स से वापस्ता हैं। ये उनसे बात करते हैं। रूबीना यास्मीन साहिबा, SBS रेडियो के उर्दू प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। ज़रा हमारे सुनने वालों को पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ कराइएगा।
मैं पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ और प्रोफेशनली मैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ। तो मेरा एक बेटा, उसको ही हैज़ ए डिसेबिलिटी, तो इसकी वजह से फिर मैंने ना 97 में MDA ऐसे जनरली ज्वाइन किया था। उस बच्चे का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, हाउसिंग का गिर जाता था, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए मॉडिफाइड घर होना चाहिए। तो फिर इस हवाले से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को जानने लगी। तो लेटर ऑन तो फिर मुझे पता लगा कि वाकई ये रियली हेल्प करते हैं। फिर मेरी नहीं, क्योंकि और भी पाकिस्तानी फैमिलीज, उनके बच्चे जो जिनको किसी के सिस्टर हैं, किसी की वाइफ हैं, तो वो लोग यहाँ जो जो पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मिलती, तो वो लोग कॉन्टेक्ट करते रहे। और ये काफी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन, अब तो ये एक्सपैंड होगी, इसके रीजनल दफ्तर भी हैं और ये रियली हेल्प कर रहे हैं। और मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बहुत लर्न किया है।
आपने खुद जैसे कि बताया कि ये आपका अपना जाती तजुर्बा था, यानी आपके घर में बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम थी। सबसे पहले इसके बारे में आपको कैसे मालूम हुआ कि कहाँ से इसकी मदद ली जा सकती है, किसने आपको इस सिलसिले में रहनुमाई की?
वो ऐसे कि मैं पैरामेटा में जा रही थी बेटे के साथ में, छोटे छोटे बच्चे थे, 97 की बात है। ये बेटा जो मेरा था, ये वुडन फ्रेम के साथ चलता था, जैसे वो रेडा नहीं होता, रेडा टाइप, पाकिस्तान से मैं लाई। तो वो एक, ये जो इसकी अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, वो मेरे पीछे की जा रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, कहती और ही ये तुम्हारा सन है, इसको क्या हुआ? मैंने कहा ये ब्रीच हुआ था और इसको सेरिब्रल पॉलिसी, लेकिन माइनर है, इसके ज़ेन पे इफेक्ट नहीं, सिर्फ थोड़ा सा टांगों से है ना, इसकी लेंथनिंग हैमस्ट्रिंग चाहिए। तो उसने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आए, हम ऐसे करते हैं कि हम हेल्प करते हैं आपके बिहाफ पे, एडवोकेसी करते हैं, आप स्कूल जो है मेन स्ट्रीम में इसको जा कर सकती हैं। तो आपको पता हमारा पाकिस्तानी कल्चर ऐसा, हमने कहा लो ये क्या करेंगे, मैं माँ हूँ, मैंने इसको लुक आफ्टर करना है, किसी ने थोड़ा आके करना है।
ये आपकी पहली सोच उनके हाँ। सवाल के जवाब में आपकी पहली सोच ये हुई?
हाँ, थोड़ा सा मैं इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी, तो फिर मैं ज़ाहिर है शुरू में एक घर लिया, वहाँ सीढ़ियाँ थी, ये बच्चा गिर जाए तो ये तो घर हमारे लिए ठीक नहीं है। वो रेंट आपको पता है यहाँ पे लीज और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तोड़ नहीं सकते। तो फिर मुझे एकदम ख्याल है, मैंने कहा मैं इनसे बात करके देखूं। अचानक उनका मुझे उसने कार्ड दिया था, मैंने ढूंढा, मिल गया। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हाँ आप और भी ना, हम तुम्हें लेटर देंगे। फिर उन्होंने लेटर दिया तो मैं उस लीज से फौरन निकल सकती थी, मेडिकल कंडीशन की बैकग्राउंड मतलब बेसिस पे ना, तो मुझे अच्छा लगा। फिर इनकी कोई ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम के कोई कंप्लेंट करनी है गवर्नमेंट को, कैसे इस तरह के मुझे कहते आना तुम ना, मैंने कहा अच्छा। फिर इनके सोशल ग्रुप भी लेके जाते थे, जैसे जिनके बच्चे डिसेबल हैं, पूरी बस जाती थी हंटर स्ट्रीट पैरामेटा से। फिर मैं एक दो दफा इनके साथ गई तो फिर मुझे मतलब अच्छा लगा। मैंने कहा देखो ये गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटी देती है, मेरा बच्चा जो इधर लकम्बा में स्कूल जाता था, तो वहां पर ये कहीं गिर गया, तो वो जो थी ऑफिसर, वो उसने मुझे फोन किया। मैंने कहा पता नहीं कि बच्चा रोए कि मैंने तो अकेले स्कूल नहीं जाना, मेरे बहन भाई इधर जाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम इसको हम ना इधर सिटी की तरफ है डार्लिंगटन उधर स्कूल भेजेंगे। मैंने कहा मेरा मैं तो कैसे जाऊंगी, अभी तो मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें टैक्सी का करके देंगे। मैंने कहा टैक्सी? तो वाकई उन्होंने फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने टैक्सी करवा के दी और ये बच्चा टैक्सी में बड़े आराम से, सिंगल अकेला बच्चा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की फैसिलिटी से जाता था और आता था, और मैं मतलब सेफ थी ना।
तो आपका कोई खर्चा इसमें नहीं था, ये गवर्नमेंट
की तरफ से?
क्यों,
बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। और फिर बकायदा स्कूल में मेन स्ट्रीम स्कूल, जहाँ के आम बच्चे हैं, जो ये नहीं कि सिर्फ जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी का स्कूल है, लेकिन मेन स्ट्रीम में वो बकायदा AD टीचर रखते थे इस बच्चे के लिए। और वो बकायदा उसको लुक आफ्टर करती थी, कोई स्पेशल कोई नीड है या कोई चीज है तो मतलब बहुत अच्छी तरीके से ना। एक दफा बल्कि इसने छोटा था पहला रोजा रखा तो इसने वो मुझे फोन किया कि ही इज हंग्री, ही इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम, ये कैसे है। फिर मैंने बताया, मैंने कहा हम रोजे रखते हैं और ये बच्चे ने शौक से रखा है रोजा, ये नहीं खाएगा। तो ये उन्होंने बड़ा इसका अप्रिशिएट किया ना, फिर उसका ख्याल रखते थे। मतलब ये है कि हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम ये ना सोचें कि ये लोग हम लोगों का ख्याल नहीं करते। अगर हम इसको सबसे पहले, जितने भी मेरे बहन भाई पाकिस्तानी हैं, फैमिलीज हैं, वो यहाँ के जो भी माइग्रेंट न्यू माइग्रेंट भी आए, मैं उनको यही अभी भी मैं ट्रेन स्पीकर हूँ, मैं उनको बताती हूँ कि आप इधर के सिस्टम को समझें, आप देखें कि आपके अवेलेबल सोर्सेज क्या क्या हैं जहाँ से आपकी नीड के मुताबिक आपको हेल्प मिल सकती है। तो मैंने फिर काफी इनसे मैंने काफी ट्रेनिंग इन्होंने मुझे दी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्वालिफिकेशन थी। तो उन्होंने, मैं इनके जो प्रोजेक्ट निकला कम्युनिटी वॉइसेस के, जिसमें ना आप जैसे मेरा बच्चा डिसेबिलिटी है या मैं खुद केयरर हूँ, तो वो ऐसे लोगों को वो ट्रेनिंग देते हैं ताकि वी कैन स्पीक ऑन अवर बिहाफ। कम्युनिटी में जाके, डिपार्टमेंट एजुकेशन में जाके मैंने लेक्चर दिए कि हमारा रिलीजन क्या है, हमारे में रिलीजन कल्चर में डिसेबिलिटी को कैसे लिया जाता है। बल्कि इनकी वसात से मुझे फंडिंग मिली तो मैंने मल्टी इसका इंटरफेथ वर्कशॉप दो की, बहुत अच्छी, जिसमें तमाम मैंने रिलीजियस लीडर को बुलाया, इधर ही MDA में किया। तो मतलब इसके अलावा इन्होंने मुझे बिजनेस डिप्लोमा बिजनेस करवाया, मुझे एक्सटेंसिव एक्सीडेंटल काउंसलिंग कोर्स करवाया, क्योंकि अब मैं बहुत ट्रेंड हूँ, अभी मैं मिनिस्टर के पास लॉबिंग के लिए जाती हूँ। इन्होंने मुझे पहले भी अपनी मैनेजमेंट में लिया था, मैं एज ए जनरल मेंबर थी, लेकिन अभी उन्होंने मुझे दोबारा, क्योंकि उन्होंने मुझे ट्रेन किया, रिक्वेस्ट की कि आप हमारी ज्वाइन कर सकती हैं, तो मैंने इनकी गवर्नेंस कमेटी ज्वाइन की। फॉर लास्ट 3 ईयर मैंने एज ए चेयरपर्सन भी काम किया, सेक्रेटरी भी काम किया, ट्रेजर भी किया, अभी मैं रिसेंटली मैं वाइस चेयरपर्सन हूँ। और इस दफ्तर की ट्रेनिंग और इसकी मतलब अच्छे, इनका ऐसा कंपैशनेट और जेन्युइन कल्चर है इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से मुझे नीडा जो है, नेशनल एथनिक डिसेबिलिटी अलायंस कैम्बरा में है और हर स्टेट से एक मेंबर लिया जाता है, तो उन्होंने मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन एमडा की बेस पे मुझे नीडा का काउंसिल मेंबर सिलेक्ट किया।
जिस वक्त आप आई थी उस वक्त आपके बेटे की उम्र कितनी थी?
उस वक्त तकरीबन 4-4.5 साल का था।
तो आज माशाल्लाह आपका बेटा जो है वो
28
माशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ा होने के काबिल हो गया
है। यूनिवर्सिटी जाता है, अभी ड्राइविंग भी करता है। इसको बहुत एंग्जाइटी थोड़ी सी थी, डरता था मैं ये भी खाना मुझे ये हो जाएगा, जैसे वहम होता है, लेकिन ही इज नो वेरी फाइन। यहाँ की काउंसलिंग की वजह से, ये मेरा थोड़ा सा इधर इन्वॉल्व होने की वजह से।
यहाँ जो नए आने वाले हैं और अगर किसी के यहाँ कोई ऐसा हैंडीकैप या कोई डिसेबिलिटी से मुतासिर कोई शख्स हो, उनके लिए आप सबसे पहला मशवरा क्या देना चाहेंगी कि वो कहाँ से राबता करें, कहाँ उन्हें मदद मिल सकती है?
देखें, जो लोग न्यू साउथ वेल में हैं, उनकी उनका अगर कोई गवर्नमेंट के साथ कोई, नए नए आते हैं, किसी को हाउस का नहीं मिलता, किसी को इमिग्रेशन का मसला है, किसी के बच्चे के लिए पेरेंट्स आ गए हैं या कोई बच्चा पीछे रहता है, नहीं
जी,
या किसी की कोई स्पाउस है और इस आदमी को किसी को डिसेबिलिटी है, तो ये जो एमडा है, ये इसकी विजन यही है कि ये ऐसी सोसाइटी है, विजन इज अ सोसाइटी जहाँ पे हर एक को रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड और डिसेबिलिटी, दे आर वेलकम्ड, दे आर इंक्लूडेड एंड सपोर्टेड। और ये एमडा जो है उनको रेंज ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने खुद भी पाकिस्तानी लोगों को रेफर किया है। एक लेडी थी हमारी पाकिस्तान की, बेचारी शी वाज इन डोमेस्टिक वायलेंस, तो मुझे मिली, तो फिर क्योंकि मैं इन्हीं के थ्रू मैं फ्रंट लाइन वर्कर भी हूँ डोमेस्टिक वायलेंस की, क्योंकि डिफरेंट ट्रेनिंग में ये मुझे रेफर करते रहते हैं, मुझे ही नहीं रेफर करते बल्कि और भी लोग जो हैं लेबनीज कम्युनिटी से, इंडियन कम्युनिटी से, श्रीलंकन से, बांग्लादेश से, फिजी से, the people who have a disability, जो कि जो फैमिली केयरर हैं, तो उनको भी ये वेलकम करते हैं और कोई ट्रेनिंग किसी में इन्वॉल्व होना चाहे, और मैंने वॉलंटियरिंग भी की है कि अगर किसी वीमन को डिसेबिलिटी है और वो यहाँ पे बकायदा, पहले एक प्रोजेक्ट था इसको ये खुद ही चलाते थे ना, तभी भी हम इससे मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं और हम इसको मतलब अपने सेल्फ हेल्प बेसिस पे भी हम कर रहे हैं, कि जो भी कोई ऐसी एक औरत बेचारी है उसको, या बच्ची है उसको डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस है, तो उसके बिहाफ पे हम उसको प्रमोट करें। अगर वो वायलेंस में है उसका वायलेंस के लिए उसकी हेल्प की जाए, अगर उसको कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई वैसे सपोर्ट चाहिए, बल्कि एडवोकेट जो हैं ये लोगों के घरों में जाकर भी उनकी हेल्प करते हैं। अभी मैं बताती हूँ, एक पाकिस्तानी लेडी है इधर ही राइट की तरफ, शी बेचारी यहाँ पे आई, उसके हस्बैंड ने छोड़ दिया और उसके हस्बैंड ने शादी कर ली चाइनीज से, और बेचारी वो सीरियसली सिक है। अब उसको हाउसिंग का घर भी मिला और उसको उसके एडवोकेसी के लिए उसके कुछ प्रॉब्लम, उसके 3 बच्चे पाकिस्तान में, तो उसको फिर मैं ऑफिस में लाई, वो उसके बिहाफ पे अब वो कर रहे हैं एप्लीकेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कई लोगों को मैंने आपको बताया था ना, जो लेडी यहाँ पे यंग लड़की थी यहाँ पे, उसको मैंने रेफर किया और अभी उसकी मदर भी आ गई, उसका बेटा भी यहाँ पे आ गया, दे हैव गॉट सिटीजन, दे हैव गॉट हाउसिंग डिपार्टमेंट हाउसिंग से घर भी मिल गया पैरामेटा में, तो दे आर वेरी हैप्पी। ये एक केस नहीं है, यहाँ इनके पास तकरीबन 600 क्लाइंट्स हैं और वॉलंटियर की भी लिस्ट जो है ना वो काफी है। इनका न्यूज लेटर निकलता है और बकायदा देखें जो भी माइग्रेंट आते हैं उनको, वो जो उनके घर में को पढ़ा लिखा है या दूसरा है, वो गूगल में जाके रिसर्च कर सकते हैं कि डिसेबिलिटी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, कैसे हैं। तो ये पीक ये बल्कि बुलंगोंग में भी है, हस्तविल में भी है, रीजनल बीगा में भी है। तो इसलिए मल्टीकल्चरिज्म पे, मल्टीकल्चर न्यू साउथ वेल पे ट्रेनिंग डिफरेंट जाके ये ऑर्गेनाइजेशनों में वर्कशॉप में बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस में हमें ट्रेन लोगों को भेजते हैं, जाके हम बोलते हैं, हम बताते हैं कि हमारा क्या एक्सपीरियंस है और हम क्या चाहते हैं, हाउ वी चेंज द लॉबी, द मिनिस्टर्स एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी हैं, दे शुड चेंज द सिस्टम नॉट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, नहीं जो भी पॉलिटिशियंस हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, बल्कि उनको कम्युनिटी के डोर स्टेप पे जाके देखना चाहिए व्हाट डू दे नीड।
कि डिसेबिलिटी की असेसमेंट किस तरह होती है, यानी किस तरह कोई अगर ये कहता है कि हमारे बच्चे को डिसेबिलिटी है, बाज़ दफ़ा उसके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, बहुत सी तरह की मुख्तलिफ किस्म की डिसेबिलिटीज होती
हैं, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी
ऑफ कोर्स। हाँ, तो इसी तरह
पहले कि आप देखें आपका जीपी जो है वो अच्छा, आप उसको बताएं कि आपका बच्चा क्या फील करता है। फॉर एग्जाम्पल बाज ऐसे भी फैमिलीज आती हैं को उनको पता नहीं होता आपका बच्चा छोटे होते को ऐसा भी कहते ये शरारती है, दे कांट फिगर इट आउट। लेकिन अगर जब डॉक्टर अच्छी हो फिजिशियन तो वो उनको रेफर करती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, वो वेटिंग लिस्ट है उसकी लेकिन प्रायोरिटी पे वो जल्दी देख लेते हैं, वो फिर बकायदा उसके असेस करते हैं। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, अगर कोई बच्चा स्पीच का रुक रुक के बोलता है तो फिर डॉक्टर अच्छी जो होगी वो कहेगी इसको तुम स्पीच पैथोलॉजिस्ट को दिखा दो। जैसे जो बच्चे फैमिली है जिनके बच्चों को ऑटिज्म है, हम समझते हैं अच्छा है, नहीं बच्चा शरारती है, कुछ नहीं है, ऐसे ही है, गिर गया है, इसके चोट लगी है, यू अंडरस्टैंड। लेकिन बाद बच्चे कीप ऑन रिपीट करते जाते हैं, एक बात रिपीट करते जाते हैं, नहीं
जी।
तो वो फिर पता चल जाता है। और क्योंकि यहाँ पे स्पेशलिटीज हैं, यहाँ पे हर उसका ना एक, जैसे डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट है, और क्या कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जनरल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इससे फिर एडवोकेट्स हैं। एडवोकेट सिर्फ ये नहीं कि आप, मैं जो एडवोकेट मैं कह रही हूँ ये मैं कोर्ट के एडवोकेट नहीं कह रही
जी जी।
ये एडवोकेट्स मैं एमडा के कह रही हूँ, ये एडवोकेसी करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दी ऐसे बच्चे, ऐसी फैमिलीज जिनके डिसेबिलिटी है उनकी बिहाफ पे एडवोकेसी करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अगर किसी का, मैंने जैसे बताया ना इमिग्रेशन का मसला है, हाउसिंग का है, कोई और कोई केस है सेंटरलिंक के साथ है, तो लोग उनके बिहाफ पे बेबकायदा उनकी उनकी सिचुएशन देख के उनको लेटर लिखा जाता है, उनसे फोन पे बात की जाती है। अभी एक 2 साल केस था किसी की डिसेबिलिटी पेंशन का, तो इस ऑफिस के थ्रू उसने 1.5 साल बाद जाके दे वन और उनको मिल गई डिसेबिलिटी पेंशन। मैंने 2-3 लोगों की मैंने रेफर करके करवाई है, एक लेडी बेचारी भी न्यूजीलैंड से आई थी, तो ऐसे ही है।
तो मेरे ख्याल में ये तो इतना बड़ा टॉपिक है जिस पे बहुत देर बात हो सकती है, और बहुत कुछ इसमें बहुत है।
बिल्कुल, हाँ।
लेकिन हम यहाँ कम्युनिटी की इंफॉर्मेशन के लिए ये बता दें कि अगर इस सिलसिले में किसी को कोई मालूमात चाहिए हो तो सिर्फ न्यू साउथ वेल्स में नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर स्टेट में, हर रियासत में इसी तरह का निज़ाम मौजूद है। आप अपनी अपनी रियासतों में गूगल भी कर सकते हैं, ढूंढ भी सकते हैं कि किस तरह की NDIS की स्कीम, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम है, उसके ज़रिए भी बहुत सी मदद फराहम की जाती है।
हाँ।
और इसके अलावा आपने बहुत सी
जी जी मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी एमडा जब से NDIS आया है ना, इसकी जो पहली मीटिंग थी एनडीआईए की, वो मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और अब तो ये रूल आउट उन्होंने कर दिया है सिडनी में, दूसरे स्टेट्स में भी आस्था सा कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर किसी का, क्योंकि उनकी जो असेसमेंट है ना एनडीआईए के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, कई लोगों को उसमें ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर लैंग्वेज वाइज इंफॉर्मेशन का सही नहीं पता चलता, तो उसके लिए भी कोई हेल्प लेना चाहे तो वो ऐप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, दे विल हेल्प यू देम, उनके बिहाफ पे वो बात करते हैं, उनके बिहाफ पे वो फोन पे बकायदा फॉर्म फिल करके भी देते हैं और प्री प्लानर भी पहले करते रहे हैं ये, और अभी इनके पास अपील ऑफिसर भी है एनडीआईएस का। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो थी एनडीआईएस अप्रूवल वो रिजेक्ट हो गई है, तो ये आपके इनके इन्होंने बकायदा अपील ऑफिसर रखा हुआ, अभी इनके पास इतने केसेस आए थे कि उन्होंने सेकेंड हम वो हायर कर रहे हैं अपील ऑफिसर। तो ये जो है ना एनडीआईएस, ये मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये आपकी डिसेबिलिटी पेंशन के अलावा मनी है जो आप खर्च कर सकते हैं अपने ट्रीटमेंट पे, अपने कोई अपने अगर सोशल विजिट चाहता है शहर के लिए, इसके पास कोई नहीं, वो जाता है कोई पर्सन डिसेबिलिटी का था मैं दूसरी जगह, उसके साथ भी अगर कोई असिस्टेंस जाएगा तो उसको भी ये पे करेंगे।
और इसी तरीके से बाज़ लोगों को जो डिसेबिलिटीज़ होती है उसमें, जैसा कि आपने बताया कि घर घर का जो सेटअप होता है या उसमें एंट्री के दरवाजे हाँ, हैं, बाथरूम में
मॉडिफिकेशंस,
वो भी इसी के तहत करवाए जा सकते हैं
बिल्कुल बिल्कुल
एनडीआईएस स्कीम में, और उसमें आपको कोई खर्चा नहीं आएगा अगर असेसमेंट आपका सही हो जाता है।
इस तरह है ना कि जब आपकी असेसमेंट होगी कि आपके जो है ना बेसिक क्या नीड्स हैं उसमें प्रायोरिटाइज की जाती हैं, तो उसकी बकायदा आपकी डॉक्टर की रिपोर्ट की बेस पे तो आपकी फंडिंग अप्रूव होती है। फॉर एग्जांपल आपकी 20,000 फंडिंग अप्रूव हुई है, आप समझते हैं कि आपके लिए अनफ नहीं है, आप जो है आपका कोऑर्डिनेटर है अपने एरिया का जिसके जरिए आप एनडीएस कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिए आप करके, क्योंकि ये मेरी नीड है ये पूरी नहीं हो सकती, फिर आप अपील कर सकते हैं। और एक इतनी बड़ी बात है कि अब बकायदा आपके पास ऑफिसर बैठा हुआ अपील, ही विल नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम यू, आप आए उनको अपना सारा दिखाएं प्लान अपील करके तो वो फिर फंडिंग बढ़ाते हैं।
अच्छा ये भी बताइएगा कि बहुत से लोग बराह रास्त डिसेबिलिटी से मुतासिर नहीं हैं या उनके घर में कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर वो कुछ वॉलेंटियर या रजाकाराना काम करना चाहते हैं, कुछ डिसेबिलिटी से मुतासिर लोगों की मदद करना चाहते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं, उनके पास वक्त है ऐसा करने का?
देखें अगर ऐसे लोग कोई वॉलंटियरिंग करना चाहें तो वो अपना एज ए वॉलंटियर फॉर्म वो यहाँ पे आके एज ए वॉलंटियर रजिस्टर कराएं, यहाँ पे लोग स्टूडेंट्स भी आके सोशल वर्क का वो भी आके हेल्प करते हैं, और देर आर लॉट ऑफ वर्क नहीं फॉर एज ए वॉलंटियरिंग, और आप बहुत कुछ सीखते भी हैं और आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, कई लोगों ने सिर्फ वॉलंटियरिंग की और बाद में उनको जॉब भी मिल गई।
तो सामाइन जहाँ तक हमारे सामाइन तक ये आवाज़ पहुँच रही है, तो मल्टी कल्चरल डिसेबिलिटी एडुकेसी ग्रुप्स की तरह के ऑस्ट्रेलिया भर में ग्रुप्स मौजूद हैं, जिस तरह का MDAA है जिससे रुबीना यास्मीन साहिबा भी वाबस्ता हैं, तो आप उनसे भी राबता कर सकते हैं, और अगर आप कोई मदद करना चाहें या वॉलेंटियर काम करना चाहें, जैसा कि उन्होंने बताया कि आप उसमें बहुत कुछ सीखते हैं और उसमें उससे आपके लिए रोज़गार के दरवाज़े मुस्तकबिल में भी खुल सकते हैं, और आपको ना सिर्फ एक जिसे कहते हैं आपके दिल को एक इत्मीनान होता है कि आपने दूसरों की कोई मदद की, उसकी जो एक खुशी होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की होती है जो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तो यकीनन आपने बड़ी कारामद बातें हमारे सामईन तक पहुंचाई हैं, और हमें उम्मीद है कि जहां तक आपकी आवाज़ और हमारी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ ये लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी और लोग इससे इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। आखिर में ऑस्ट्रेलिया भर में आपकी आवाज़ पहुँच रही है, कुछ और कहना चाहेंगी हमारे सामईन से?
हाँ देखिए मैं आपको इनका टोल फ्री नंबर भी बता देती हूँ
जी,
के फैमिलीज एंड केयरर्स न्यू साउथ वेल में जो भी आप अपने राइट्स और इंटरेस्ट के लिए आप रब्ता करना चाहें आप, क्योंकि हम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इनका नंबर है 1-800-629-072 और जो लोकल नंबर है वो है 02-98-91-6400 और इनका नेशनल रैली सर्विस भी है और इनके इंटरप्रेटर भी हैं इनके पास ना,
तो इनके पास इंटरप्रेटर भी मौजूद हैं जो आपको उर्दू जबान में भी आपकी मदद कर सकते हैं, सब कुछ आपको बता सकते हैं, तो आपको कोई इसमें परेशानी नहीं होगी अगर आप को अंग्रेज़ी में बोलने में कुछ दिक्कत है या आप नए आए हैं अभी यहाँ के एक्सेंट से वाकिफ़ नहीं हैं, तो रब्ता कीजिए आप 1-800-629-072 पे, या फिर लोकली न्यू साउथ वेल्स में आप 02-98-91-6400 زیرو پر رابطہ کر سکتے ہیں.
اور ابھی جو جی جی اور جو نیو مائگرنٹ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں نا ان کے ادھر, یہ کیونکہ ادھر انگلش بھی سکھائی جا رہی ہے اور ہر ٹیوزڈے کو سیشن ہوتا ہے, کس میں کبھی کرافٹ سکھاتے ہیں, کبھی ہیلدی ایٹنگ, کبھی نیوٹریشنل تھنگس میں. اور یہ وہ آپ سے جو کلائنٹس ہیں, جو کنزیومرز ہیں ہم کہتے ہیں, جو بھی آپ کے ان کے ممبرز ہیں, اینی ون کین بی ممبر, تو وہ ان سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے جب ان کی ہوتی ہے نا کنسلٹیشن ڈے, کہ آپ کیا چاہتے ہیں, واٹ آر یور نیڈس, واٹ آر یور ریکوائرمنٹس, تو جو بتاتے ہیں اس میں کر کے پھر وہ وہی چیزیں یہ امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور یہ چیز میں نے ان کی بڑی اچھی دیکھی ہے کہ دے ایڈوائز بھی لیتے ہیں, کنسلٹیشن بھی لیتے ہیں اور پھر اس سے امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں.
یعنی جو بھی ان کا پلان یا پروگرام بنتا ہے وہ فیڈ بیک بیسڈ ہوتا ہے.
بالکل بالکل. اور ہم باقاعدہ اگر کوئی کنزیومر آیا ہے, اس کو کوئی کمپلینٹ ہے اس آرگنائزیشن سے کچھ بھی ہے, تو وہ اس کے لیے بھی ہم نے ادھر انہوں نے باکس رکھا ہوا ہے, ایون یو کین کمپلین, وہ باقاعدہ ہم کمپلین ہینڈل کرتے ہیں اور اس پہ ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور دیٹس وائی اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ. اور یہ دن بدن یہ ایمڈا جو ہے یہ ایکسپینڈ ہوتا جا رہا ہے, جو لوگ جو ہیں ڈے بائی ڈے انکریز ہوتے جا رہے ہیں ان کے ممبرس, اور ان کا ہر سال یہ جی ایم بھی ہوتی ہے, ڈفرنٹ فنکشن ہوتے ہیں.
سڈنی میں جہاں تک آپ کی آواز پہنچ رہی ہے, آپ سڈنی کے سننے والوں کو یہ بتا سکیں گے کہ سڈنی میں اس کے آفیسز کہاں کہاں ہیں, اگر لوگ پہنچنا چاہیں تو آسانی سے پہنچ سکتے ہیں وہاں پر؟
ہاں جی بالکل, وولنگونگ میں ہے, گرینویل میں ہے, 10-12 اچنسن اسٹریٹ گرینویل, بوائز ہائی اسکول کے بالکل سامنے, اور ہسٹویل میں ہے جی.
بہت بہت شکریہ روبینہ یاسمین صاحبہ, اور ہمارے خیال میں جو معلوماتی یہاں پہ باتیں آپ نے ہمارے سامعین تک پہنچائی ہیں اس سے بہت سے لوگوں کو رہنمائی اور مدد مل سکے گی. بہت شکریہ ہمارے سامعین سے بات کرنے کا.
شکریہ.
کیا آپ کو یہ فیچر پسند آیا؟ اپنے پسندیدہ پوڈکاسٹ پلیئر پر SBS اردو کو سبسکرائب کیجیے.